ओमेभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः और ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಶ್ರಾವಕ ವರ್ಗ ಮೇ तीन भेद किया गया है, उनकी आचरण और श्रद्धा की अपेक्षा से। पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक वह होता है जिसका गुणस्थान चतुर्थ माना जाता है। नैष्ठिक श्रावक उन्हें कहते हैं जिनको पंचम गुणस्थान प्राप्त है और पंचम गुणस्थान के अनुरूप बाह्य और आभ्यंतर आचरण को स्वीकार किया है। उभय आचरण बाह्य और अभ्यंतर नैष्ठिक श्रावक के लिए अनिवार्य भी है। एक पक्षी आचरण से पंचम गुणस्थान बनता नहीं। बाह्य पक्ष को धारण किया और अभ्यंतर पक्ष को धारण यदि नहीं करते हैं तो पंचम गुणस्थान की उपलब्धि नहीं होगी। बाह्याचरण स्वीकार करना आसान है, अभ्यंतर आचरण को बनाना इसके लिए विशुद्धि परम आवश्यक होती है। विशुद्धि के बल पर ही पंचम गुणस्थान प्रकट होता है। बाह्याचरण तो उसी विशुद्धि को जगाने का एक साधन होता है। इसलिए ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें हर विषय में बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के पक्षों का विचार अवश्य है। सम्यक्तों में भी यदि हम देखते हैं तो इसमें भी बाह्य पक्ष और अभ्यंतर पक्ष दोनों हैं। अभ्यंतर पक्ष ये है कि अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म इनका उपशमन क्षय इत्यादि प्राप्त कर लेना यह अभ्यंतर पक्ष है। यह विशुद्धि के माध्यम से संपन्न होता है। पांच लब्धियों में ढलकर करण लब्धि में जाकर जब उन विशुद्धियों के माध्यम से हम दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी कर्म को उपशमित करते हैं तो अंतरंग पक्ष उपलब्ध होता है। यह सम्यक तो वास्तविक सम्यक है। जो विशुद्धि से उपलब्ध होता है वो वास्तविक सम्यक है। इससे पूर्व व्यक्ति बाह्याचरण को स्वीकार करके प्रयत्न करता रहता है। वह प्रयत्न क्या है तो अनायतनों से बचना, आठ मूर्ताओं से बचना, आठ अंग दोषों से बचना, आठ मदों से बचना और तीन मूर्ताओं से बचना, ये बाह्याचरण है। दोष जो हमारे लिए बाहर में हमारी आत्म सम्यक्त्व की सिद्धि में कारण नहीं बन सकते, उनका त्याग के भाव तो होते ही हैं और ये होना आवश्यक भी है। और भाव होते ही जरूर हम आचरण में लाना प्रारंभ कर देते हैं कि हम अनायतन का सेवन नहीं करेंगे, आयतन का ही सहारे से हम संतुष्ट रहेंगे। इसमें भी संतुष्टि आती है। ते पूर्व संतुष्टि नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा वो भी कर लूं ये भी कर लूं, तो अनायतन की ओर भी अपेक्षा और आयतन को आयतनों की ओर भी अपेक्षा, दोनों तरफ से अपेक्षा भाव जब रहते हैं तो हमारी भूमिका मजबूत नहीं बनती, जो बाह्य पक्ष वाली भूमिका है। ठीक, को मजबूत बनाने के लिए आयतन हमारे लिए पर्याप्त हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये आयतन मेरे लिए बाह्य सत्संग है, इस सत्संग में तो जो मैं पाना चाहता हूं अभ्यंतर पक्ष की सिद्धि वो हो जाएगा। अनायतन से अभ्यंतर पक्ष की सिद्धि कैसी हो सकती है, ये विचार करता है। अनायतन के सहारे से तो अभ्यंतर पक्ष कभी सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वह अनायतन की कोटि में रखा गया और उससे बचने के लिए कहा गया, और यही जैन दर्शन है। जैन दर्शन स्वयं की उपलब्धि की कला सिखाता है, आत्मा की ओर बढ़ना है, आत्मा की अनंत शक्तियों को पाना है, अनंत शक्तियों को जगाना है, जो कि वह श्रद्धा गुण से ही प्रारंभ होता है। श्रद्धा गुण को सिद्ध करने के बाद हम सम्यक्त गुण को सिद्ध कर लेते हैं, सम्यक्त गुण सिद्ध हो गया तो ज्ञान गुण भी सम्यक सिद्ध हो जाता है, फिर धीरे धीरे चारित्र की ओर बढ़ करके चारित्र को भी समीचीन रूप से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया चतुर्थ गुण स्थान में, किंतु यहाँ आने के बाद भी यदि हम चारित्र संबंधित बाह्याचरण स्वीकार करते हैं और अभ्यंतर आचरण स्वीकार नहीं करते हैं तो भी असंयम दशा में रहते हैं। सम्यक दृष्टि भी असंयमी ही होता है। चतुर्थ गुण स्थान में रह करके महाव्रतों का बाह्याचरण भले ही करता रहे, असंयमी रहता है। पंचम गुण स्थान में भी होकर के भले ही महाव्रतों का आचरण करते रहे, असंयम की कोटि में ही आता है। तो ये बहिरंग पक्ष तो सिद्ध कर चुका है, अब शेष क्या करना है, भाव पक्ष को सिद्ध करना है, और भाव पक्ष को सिद्ध करने के लिए अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी तीन कषायों को वह उपशमित जिस दिन करेगा वह बाह्य पक्ष के माध्यम से ही करेगा। बाह्य पक्ष क्या है, महाव्रतों का आचरण। इस बाह्य पक्ष के बिना अभ्यंतर पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं हो सकता, भावलिंग अंतरंग पक्ष, द्रव्यलिंग बहिरंग पक्ष, बाह्य लिंग के बिना अभ्यंतर लिंग की सिद्धि नहीं होती। सम्यक दर्शन सिद्ध कर सकते हैं, वो तो चौथे में भी हो रहा है, पंचम में भी हो रहा है, किंतु भाव चारित्र की उपलब्धि नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि विशुद्धि अपेक्षित है, उसको हमने नहीं पाया अभी, अब विशुद्धि की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बाह्य पक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे, बाह्य पक्ष उपलब्ध हुआ, पुरुषार्थ किया आपने तो बाह्य पक्ष उपलब्ध हो गया, किंतु अभ्यंतर पक्ष की सिद्धि के लिए कुछ और पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, जो कि उसको करण बोलते हैं, अधक करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ये करण परिणामों को, संयम को पाने के समय में भी, भाव संयम को पाने के पूर्व इनको धारण करता है। कौन से परिणाम, तीन, हाँ, त्रिकरण, तीन करण, अधकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, इनको धारण करके ही वह भावलिंग को स्वीकार करता है। द्रव्यलिंग को स्वीकार करने के लिए कोई करण लब्धि की जरूरत नहीं, करण परिणामों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बहिरंग पक्ष आचरण वाला पहले में भी प्राप्त हो सकता है करण के बिना, चौथे में भी प्राप्त हो सकता है करण के बिना। ऐसे कैसे तो इसके लिए भाव, द्रव्य ग्रहण करने के लिए भाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ आचरण करने की इच्छा शक्ति जरूरत है। इच्छा शक्ति जरूरत, मुझे ये महाव्रतों का आचरण करना है या अनुव्रतों का आचरण करना है, या तो अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से पूछो तो मुझे अनायतन से बचना है, ऐसी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल हो जाए तो बायाचरण बाह्य पक्ष आ जाता है, चारित्र संबंधित भी और सम्यक तो संबंधित भी। परंतु चारित्र संबंधी भाव पक्ष जो होता है उसको पाने के लिए त्रिकरण और आवश्यक है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए त्रिकरण तो प्राप्त किए ही थे, जो करण लब्धि के अंतर्गत तीन उपलब्ध हुए थे, अधकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण पंचम लब्धि में, वैसे चारित्र के लिए भी त्रिकरण बताया गया है। तो ये चारित्र संबंधी आभ्यंतर पक्ष का साधन त्रिकरण रूप विशुद्ध परिणाम, ये इसके लिए तो अलग से पुरुषार्थ चाहिए ना। अगर नहीं चाहिए ये कहेंगे तो द्रविलिंग आते समय भावलिंग भी प्रकट होना ही चाहिए, तो ऐसा नियामक भी नहीं है, ऐसा नियम भी नहीं कि द्रविलिंग को स्वीकार करते समय यानी द्रव्याचरण को, बाह्य पक्ष को स्वीकार करते समय, बाह्याचरण को स्वीकार करते समय अभ्यंतर आचरण स्वयमेव प्रकट होता है, ऐसा नियम नहीं है। कैसा नियम है? तो नियम ऐसा है, बाह्य पक्ष को स्वीकार करते समय यदि त्रिकरण रूप परिणाम भी विद्यमान है तो दोनों एक साथ प्रकट होंगे, और त्रिकरण रूप परिणाम नहीं है और बाह्याचरण स्वीकार किया जा रहा है तो द्रविलिंग तो आ जाएगा, भावलिंग आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जैन दर्शन में जो है उसको जहां जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हुए जाना है। व्यवस्था पहले समझ में आ जाए और आचरण अपने आप पुरुषार्थ तो उस दिशा में हम कर सकते हैं। यहाँ जो तीन प्रकार के श्रावक वर्ग है, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। साधक श्रावक तो वो तो संलग्नारत श्रावक माना जाता है, नैष्ठिक श्रावक ही जब संलग्नारत होता है उस समय वह साधक नामधारी बन जाता है। पाक्षिक श्रावक अगर संलग्ना ले रहा हो को साधक की उपाधि नहीं है। सम्यक्तवान और आचरणवान ये दोनों होना अनिवार्य है साधक बनने के लिए। साधक यानी साधना करने वाला, क्या क्या साधना करने वाला? सम्यक्त्व की साधना करने वाला, चारित्र बाह्य पक्ष वाला चारित्र उसकी साधना करने वाला, और भाव पक्ष वाला चारित्र उसकी साधना करने वाला। जब संलग्ना के लक्षण प्रकट होते हैं अपने जीवन में, संलग्ना का समय आता है तब वह जब संकल्पित होता है संलग्ना के लिए तब उसको श्रावक साधक श्रावक माना गया। अकेला सम्यक्त को लेकर के संलग्ना को साधना व्यर्थ है, संलग्ना उसी को है जिसके पास भाव पक्ष वाला चारित्र और द्रव्य पक्ष वाला चारित्र अनुव्रत या महाव्रत होता है। मुनि की अपेक्षा से महाव्रत और श्रावक की अपेक्षा से अनुव्रत ये होता है, उभय पक्ष वाला चारित्र होता है उसकी संलग्ना होती है। केवल बाह्य पक्ष वाला चारित्र होता है तो उसके लिए भी संलग्ना नहीं है। देखो ये जैन दर्शन क्या क्या कहता है, कितनी गहराई में जाकर के आपको उठा उठा करके वस्तुओं को दे देता है। ये देख लो ये ऐसा, ये देख लो ये ऐसा, ये देख लो ये ऐसा और है। संलग्ना कषायों को कृश करना और काया को कृश करना, क काया भी संलेखना के योग्य होना चाहिए और आत्मा के कषाय परिणाम भी उसके योग्य संलेखना के योग्य होना चाहिए। तो कषाय कृष करने का मतलब क्या? क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी पर शांति से मरण करना, तो ये तो हर कोई कर सकता है। संलेखना का अर्थ ये नहीं बताया जा रहा है। संलेखना का अर्थ जिस चारित्र को आपने बाहर में स्वीकार किया है उसके अनुरूप अभ्यंतर में भी कषाय परिणति उपशमित क्षोपशम दशा को प्राप्त हुआ होना चाहिए। यदि अनुवृत्ति है तो 12 अनुवृतों का या 11 प्रतिमाओं का धारण करके पालन कर रहे हैं तो अभ्यंतर पक्ष वाला जो कषाय है वो अनंत अनुबंधी भी हो सकती है, वो अप्रत्याख्यानावरणी भी हो सकती है। तो दो तो हो सकती है। अगर प्रत्याख्यानावरणी का उदय हो तो अभ्यंतर पक्ष वाला चारित्र भी है और बाह्य पक्ष वाला चारित्र भी है, क्योंकि पंचम गुण स्थान में कौन सी कषाय का उदय है? प्रत्याख्यानावरणी। इसके उदय में अनुवृत्ति रहता है क्या? नहीं रहता है। अब कषाय को कृश करने का मतलब क्या है? यहां यदि पंचम गुण स्थान में है और संलेखना का टाइम आ गया, शरीर जवाब देने लगा, अब संलेखना लेना है, इनके लिए क्या कषाय कृश करना? सिर्फ कषाय काया को तो ही कृश करना है, और यह काया संलेखना की योग्य अवस्था को प्राप्त है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो इसको बनाना पड़ता है। शरीर संलेखना के योग्य नहीं है तो शरीर को तो बनाना ही पड़ता है। उसके लिए यदि रोग हो तो रोग का निवारण करो, और कोई इसमें समस्याएं हैं समस्या को दूर करो और इसको निर्विकल्प बनाओ ताकि यह अपने विशुद्ध परिणामों की रक्षा में कोई बाधक न बने। तो काया को तो ठीक ठाक करना, संलेखना के योग्य बना देना, ये तो बाहरी काम है, ये एन के एन प्रकार हो सकता है। लेकिन अभ्यंतर कषाय की परिणति, प्रत्याख्यान का उदय तो है और इस कषाय को कृश करना है या और किसी कषाय को कृश करना है, तो दोनों तरफ ध्यान रखा जाता है। जो उपशमित हैं वो अप्रत्याख्यानावरणी और अनंतानुबंधी, इसका उदय तो आने नहीं देना, यह भी संलेखना का अंग है, कषाय संलेखना का अंग है, इसको उदय में आने नहीं देना। हो सकता है लास्ट टाइम तक उदय आ जाए, कषायों का क्या भरोसा है? हाँ, लास्ट में भी उदय में आ जाए, दर्शन मुनि उदय में आ जाए, अनंत अनुबंधी उदय में आ जाए, अप्रत्याख्यान उदय में आ जाए, आ सकता है। अप्रत्याख्यान उदय में आ रहा है तो ऐसा आएगा, सम्यक दर्शन का तो घात नहीं कराएगा, वो कहेगा कि परिग्रह ले लो जो छोड़ा है, ये हो गया, जो छोड़ा है त्याग किया है, एक देश त्याग किया है, सभी तो किया नहीं, अनुवृत्ति हो पंचम गुणस्थान वर्ती हो, जिसको त्याग किया है, एक देश त्याग किया है, उन परिग्रहों के प्रति ममत्व भाव प्राप्त कर लो। ये प्रेरणा अगर अप्रत्याख्यानावरणी कषाय से मिल गई और उदय में आया तो गिरा, चौथे में आया गिर गया, और चौथे में आने के बाद अब देखो, चौथे में आने के बाद अप्रत्याख्यान का उदय हुआ लेकिन बाह्य चारित्र ज्यों का त्यों है, अभी परिग्रह तो ग्रहण नहीं किया है, करने के भाव मात्र आए हैं इसलिए गिरा, करने के भाव मात्र आए हैं इसलिए गिरा। अब ऊपर उठ सकता है कि नहीं? क्या गिरा तो गिरा ही, उठ भी सकता है और उठने का पुरुषार्थ न करे, गिरा ही रहेगा, लेकिन उठने के लिए और त्रिकरण करने पड़ेंगी कि नहीं? तो त्रिकरण में विशुद्ध परिणामों की उपलब्धि और करनी पड़ेगी। एक कषाय से लिखना, अगर गिरे हैं तो कषाय क्रश करो। द्रव्य संयम तो उपलब्ध है, उसको पाने की जरूरत नहीं, केवल भावों का सुधार होना है। कषाय को क्रश करो, संलेखना तुम्हारे लिए भी है जो पतित हो। पंचम से चतुर्थ में आए हैं तो भी कषाय क्रश करना आवश्यक है, क्योंकि संलेखना भाव पक्ष के बिना नहीं हो सकती। भाव पक्ष के बिना संलेखना नहीं हो सकती। द्रव्य पक्ष की संलेखना संलेखना की कोटि में आती ही नहीं। तो क्या महाराज चौथे गुणस्थान में गिर करके आया हुआ अनुवृत्ति, उसका अनुवृत्त क्या मिथ्या कहलाएंगे? क्या सम्यक ठहराओगे? मिथ्यात्व की कोटि में ही आएंगे। मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व पहला गुणस्थान नहीं, गुणस्थान तो चौथा है, लेकिन भाव अनुवृत्त से च्युत होकर आया है। भाव अनुवृत्तों के बिना द्रव्य अनुवृत्त सम्यक नहीं माने जाते, ये सिद्धांत है, जैन दर्शन है। क्योंकि गुणस्थान नहीं है, तो गुणस्थान ही नहीं है तो अनुवृत्ति कैसे? अनुवृत्ति उसी का नाम जो पंचम गुणस्थान में है। नैष्टिक श्रावक तो उसी का नाम जो पंचम गुणस्थान के आचार विचार को बाह्य और अभ्यंतर रूप से उभय रूप से स्वीकार किया, उभय रूप से। इनके लिए भी संलेखना, चतुर्थ गुणस्थान में जो च्युत होकर के आए हैं उनके लिए भी संलेखना संभव है, क्योंकि बाह्य पक्ष तो तैयार है। बाह्य पक्ष का घात हुआ नहीं अभी, क्योंकि परिग्रह वस्तु ग्रहण नहीं किया है। अभी तो इच्छा मात्र प्रकट हो गई थी, उसके वजह से हम गिर के चौथे में आए थे। अब चौथे में आए तो काय संलेखना करो, काय संलेखना तो कर ही रहे हैं, काय संलेखना करना आसान भी है। अब कले कषाय संलेखना करो कि कितनी कषायों को फिर वो करो। यहां प्रत्याख्यानावरणी को तो मंद रखो ही, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी जो उदय में आ चुका है उसको दबाओ, त्रिकरण परिणामों को धारण करो, पुरुषार्थ करो और उसको दबाओ। और ये नहीं हुआ तो संलेखना सक्सेस नहीं। चौथे गुणस्थान का मरण हुआ बायाचरण के साथ। बाय पक्ष अकेला क्या करेगा? आपको वह संवर्तत्व नहीं दिलाएगा। दस प्रकृतियों का संवर जो था पंचम में रहते हुए एक्स्ट्रा, 41 के अलावा 10 का यानी 51 का, 51 का जो संवर था, 51 के संवर के साथ मरण करना संलेखना मरण है। परंतु बाह्याचरण को सुरक्षित रखते हुए इच्छा होने के कारण से आप चौथे गुणस्थान में आ गए तो 41 प्रकृतियों के साथ मरण करना ये संलेखना मरण नहीं है, ये बाल मरण। बाल पंडित मरण के साथ तो 51 का संवर चाहिए ही, और पंडित मरण चाहते हैं तो पंचम गुणस्थान में मरण नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मुनि हैं, बाह्याचरण को सुरक्षित रखते हुए पंचम में आए हुए हो सकते हैं, पंचम में, चतुर्थ में, तृतीय द्वितीय पहले में भी आ सकते हैं, बाह्याचरण तो सुरक्षित है। ये द्रव्यलिंग के साथ मरण करना भी संलेखना मरण नहीं कहलाता। जैन दर्शन है ये, जैन दर्शन। इस दर्शन को निकटता से जाकर के देखेंगे तो इसमें बहुत गहराइयां हैं। उस गहराई में जाकर के मरण करना है, उस गहराई को पा करके संलेखना को हासिल करना है। अज्ञानी हो तो ये नहीं कर सकता है। जीव अज्ञानी हो तो बाह्याचरण स्वीकार करके जो अंतिम में मरण किया जाता है उसी का नाम संलेखना, ऐसा विचार करता है। यानी जो आचरण स्वीकार करता है ना, वो अधिक से अधिक क्या कर सकता है? कषायों को त्याग करके वह आचरण स्वीकार कर ही नहीं सकता। कषाय नहीं जाती अज्ञानी की, बाह्य पाप चले जाते हैं, पंच पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, इनका त्याग हो जाता है और आचरण व्रताचरण आ जाता है। पंच व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण या परिग्रह अपरिग्रह मुनि की अपेक्षा से ये आ जाता है। परंतु कषाय को वह क्यों त्याग नहीं कर पा रहा है? ये कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होता है, इतना ही मालूम है। यानी क्रिया का सब कुछ मालूम है, अभ्यंतर परिणति का कुछ भी मालूम अध्ययन नहीं है। अध्ययन के अभाव में ऐसा भी मरण होता है जो द्रव्य को ही केवल स्वीकार करके अपन मरण कर लेते हैं। बहुत जीवों का मरण ऐसा भी होता है और बहुत जीवों का मरण भी योग्य भी होता है, दोनों पक्ष सहित। बहुत सारे जीव ज्ञानी भी होते हैं और बहुत सारे जीव अज्ञानी भी होते हैं। तो जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी बने हैं, ज्ञानी बनकर मरण कर रहे हैं, वो जैन दर्शन का सूक्ष्मता अभ्यास करके, अध्ययन करके, चिंतन मनन करके मरण को हासिल कर लेते हैं। और वह शास्त्रानुसारी मरण वो हमारे लिए संवर का कारण, निर्जरा का कारण, संलेखना की सिद्धि में साक्षात कारण। हम मरण करें कोई बात नहीं, लेकिन जैन दर्शन के मान्यता के साथ, आचरण के साथ मरण करें तो हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है। बहुत प्रश्न बहुत पहले से सोच के लाए होंगे आप। ये रावक के लिए कंडीशन सुनो, कंडीशन ही इतना भयानक है तो संलेखना कैसी? कम से कम बाहरी कंडीशन ठीक ठाक हो तो संलेखना की बात भी हो सकती है। माहौल उस माहौल में है वो, और उस माहौल में रह करके कोई संस्कार नहीं किया, आत्मा को अध्ययन नहीं किया, जैन दर्शन का गहरा अध्ययन करके उस ओर आने का अभ्यास पहले से होता तो कंडीशन में जरा ब्रेक भी होता। कंडीशन फुल है, ये फुल कंडीशन में है और गलत कंडीशन में है। वो संलेखना का पात्र है भी कहाँ? उसके लिए संलेखना की चर्चा ही नहीं है। उसको तो केवल सीधा नमोकार मंत्र सुनाओ, मंद कषाय हो जाए और मरण हो जाए, भेज दो उसको। अच्छा सूत्र यही करना है, इतना इससे ज्यादा क्या करोगे? संलेखना को इतना सस्ता समझा है क्या कि हर जीव को इसको दिया जाए, हर जीव के लिए फ्री में दिया जाए? इतना फ्री है ये संलेखना? संलेखना बहुत महंगा है, रत्न है वो रत्न, चारित्र रत्न आए बिना संलेखना रत्न आता नहीं। जीवन के अंत में पाने वाला रत्न है, प्राप्त होने वाला रत्न है जीवन के अंत में। पहला, उससे पहले दर्शन रत्न, सम्यक तो रत्न और चारित्र रत्न दोनों आते हैं और मजबूत रहते हैं, ढीले भी नहीं। हाँ, संलेखना को लक्ष्य रख करके ही सम्यक दृष्टि बनता है और चारित्रवान बनता है, तब वह रत्न प्राप्त होता है। जिसने जीवन में कभी मंदिर नहीं गए, स्वाध्याय नहीं किया, और उनके लिए अपना परिवार का एक व्यक्ति भले ही वो दान धर्म करता हो, मंद कषायी हो, उसके लिए संलेखना संलेखना क्यों कह रहे हो? कुछ संस्कार ही नहीं डाले, आत्मा के कुछ संस्कार आए ही नहीं, उसके लिए क्या संलेखना? छोड़ो संलेखना की बात, संलेखना इतना नीचे वाला घटिया चीज नहीं है, वो घी है, मक्खन भी नहीं। मक्खन तो चारित्र है, और वह जो मरण कर रहा है वह तो दूध है, अभी दही तो नहीं बना, मर संलेखना दे दो। ऐसा संलेखना शब्द का उपयोग भी मत करो वहां कि संलेखना दे दो, मरण कर रहा है तो नमोकार मंत्र सुना दो, शांति से मरण करवाओ, ये शब्द उपयोग करो। संलेखना शब्द हटाओ, संलेखना शब्द तो उनको लाओ जो वृत्ति है, जीवन भर साधना की है, से संलेखना दे दो उसको, आओ मिलकर के संलेखना कराएं। और अनुवृत्ति क्या दिगंबर रहते हैं? अनुवृत्ति दिगंबर नहीं रहते, श्रावक को भी संलेखना है। देखो संलेखना की कोटी में कौन कौन से मरण आते हैं? बाल बाल मरण तो संलेखना की कोटी में नहीं है, जो कि वह पहले और दूसरे गुणस्थान में हो सकता है। बाल बाल मरण, बाल मरण चौथे गुणस्थान में होने वाला है, इनके लिए भी संलेखना है ही नहीं, संलेखना की चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्म संस्कार चारित्र का संस्कार किया हुआ व्यक्ति ही यहाँ आवश्यक है, तो वो तो है ही नहीं उनके पास। जिन्होंने चारित्र का संस्कार जीवन भर नहीं किया और चौथे गुणस्थान में हैं, तो उनके लिए भी संलेखना की चर्चा अंत में करना ही नहीं चाहिए। चारित्र का संस्कार जिसने किया है, पालन किया है संकल्प के साथ और पंचम गुणस्थान के साथ रहा हो, अनुवृत्ति हो और मरण काल उनका आया हो, तो संलेखना के लिए विचार करना चाहिए। कुछ समय तक तो उन्होंने वो जो है, कुछ समय तक तो चौथे गुणस्थान वाला, कुछ समय तक तो पंचम गुणस्थान को धारण करके आत्म संस्कार चारित्र के माध्यम से किया हो, तो उनके लिए संलेखना की चर्चा हो सकती, संलेखना की बात उनके लिए हो सकती, हर किसी के लिए नहीं है। संलेखना शब्द हटाओ नीचे के लोगों को, चौथे से नीचे संलेखना की चर्चा करो ही नहीं, चौथे में ही रहा और अंत समय तक चौथे में रहा, संलेखना की चर्चा मत करो उनके लिए। मरण का नाम संलेखना है क्या? क्या सोचते, मरने का नाम संलेखना? नहीं, संलेखना मरण अलग है और मरण अलग है। मरण तो सामान्य मरण सभी जीव कर रहे हैं, कोई मिथ्यात्व के साथ कर रहा है, कोई सम्यक्त्व के साथ कर रहा है, इस मरण को संलेखना कहा ही नहीं। वो जो मरण है बाल 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 मरण, उस बाल बाल मरण के साथ भी बायाचरण हो सकता है, महाव्रत की भूमिका रह सकती है, बायाचरण भाई पक्ष वाला चरित्र, उनके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, जिनका बायाचरण उपलब्ध है प्रयास कर सकते हैं, भावों को जगाया जा सकता है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को ही उपशमन करना उनके लिए अनिवार्य है। महाव्रतों का आचरण तो भाई है ही, कि ना अब वो अनंतानुबंधी का उपशमन करे, तो जीवन भर अभी तक क्यों नहीं किया, कहां भटक गए? रवि व्रत को लेकर के पहले गुणस्थान में क्यों रहे? क्या कमी थी? कोई न कोई कारण अवश्य है ना, पुरुषार्थ नहीं किया, भाव पुरुषार्थ नहीं किया, द्रव्य पुरुषार्थ तो हो गया, भाव पुरुषार्थ नहीं किया, तो भाव पुरुषार्थ में सम्यक तो धारण करने के लिए भी भाव पुरुषार्थ आवश्यक है, वो भी नहीं किया, और खुद का जो वेश है वो गुरु का वेश, गुरु का जो बाह्य वेश होता है ना, वही वेश है। दिगंबर तो है क्या? नहीं, दिगंबर है, दिगंबरत्व नहीं है। दिगंबरत्व अलग, दिगंबर अलग। हाँ, दिगंबरत्व जो भाव से भी जुड़ा हुआ विष है उसको दिगंबरत्व बोलते हैं, और भाव से रहित जो विष है वो दिगंबरत्व नहीं। सब उदय में रहते हैं, 25 सभी उदय में, नीचे नीचे के गुण स्थानों में। तो देखो ये नियम है, सिद्धांत है, ये ध्यान में रखो। नीचे के गुण स्थान में ऊपर के गुण स्थान वाली सारी कक्षाएं उदय में रहेंगी, पर ऊपर में, ऊपर के गुण स्थानों में जाने के उपरांत नीचे के गुण स्थान वाली कक्षाएं उपशमित ही रहेंगी। ऐसा पहले गुण स्थान में है तो अनंत अनुबंधी उदय में यदि है तो सभी कक्षाएं उदय में, और चतुर्थ में आए तो अनंत अनुबंधी का उपशमन हुआ तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सबका उदय है चौथे गुण स्थान में। पंच महूर्त पालन करता वो भी कम होता जाएगा, द्रव्यलिंग भी कम होता जाएगा। हाँ, पुरुषार्थ करे तो कम होगा। देखो पहले गुणस्थान में है तो उनके 25 कषाय उदय में है। अब अगर वह भावलिंग जगाना चाहता है पुरुषार्थ के द्वारा तो कौन कौन सी कषायों को एक साथ हटाना पड़ेगा मालूम? तीन को, अनंत अनुबंधी को, अप्रत्याख्यानावरणी को, प्रत्याख्यानावरणी को। इन तीनों कषायों को एक साथ दबाकर वो पहले गुणस्थान से छलांग मार सकता है सप्तम में, पर पुरुषार्थ आवश्यक है। हो सकता है, लेकिन पूर्व संस्कार उस टाइप के भूमिका तो आवश्यक ही है। एकाएक कोई संस्कार जगता नहीं, जैसा एकाएक आप यहाँ बैठे बैठे मैं समय से कर जाऊंगा, एक साथ नहीं हो सकता। कहीं शिखर जी जाना हो तो पूर्व से कई बार आपको विचार आया है गया है, आया है गया है, फिर एकाएक आ सकता, कभी आया नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि है, और एकाएक कैसे भावलिंग जग सकता है? संभव नहीं है वो। आपका क्या पूछना है? यही पूछना है ना कि उसके लिए अंतर्मुहूर्त काल पर्याप्त है कि वह सप्तम में जाएगा? ऐसा बहुत कम चांस है। और इसको ध्येय में रख करके हम अंतिम में भावलिंग धारण करेंगे, तब तक हम मिथ्यात्व का आचरण करेंगे, ऐसा लक्ष्य बना करके चले तो वो डेंजर है। अनायस वो तो लॉटरी, जी सम लॉटरी है वो। हाँ, बहुत कम, बहुत कम। देखो पहली बात तो ये है कि मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में जो पुरुषार्थ होता है वह एक धर्म का क्षेत्र है, परमार्थ का क्षेत्र, समर्पण के साथ ही होना चाहिए सब कुछ। समर्पण के साथ अब तक क्यों नहीं हुआ? जिंदगी पहले गुणस्थान में गई महावर्तों को धारण करके, पहले से समर्पण को क्यों नहीं जगाया? ये उपेक्षा, भाव संयम से उपेक्षा क्यों रही? तो स्वयं की कमजोरी, भय आशा स्नेह और लोभ, ये दोष चार होते हैं, इनको पाला इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इनको पालने से ही समंतभद्र स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, भय आशा स्नेह और लोभ ये चार दोष आत्मा के भाव दोष हैं। ये भाव दोष ऐसे दोष हैं जो हमें सम्यक दर्शन धारण करने से वंचित रखते हैं, और इन भावों को हम पालते रहते हैं। और ये भाव, भावों को क्यों पालते हैं? हमारे लिए ख्याति लाभ पूजा इत्यादि की अपेक्षा रहती है। कहीं ना कहीं बाह्य में हम अटक जाते हैं, स्नेहित में अटक गए। हमारा स्नेहित है वो, अगर उनको छोड़ो तो तो चलता नहीं, इसलिए हम इतना ही कर सकते हैं। क्या जो बाह्य बाहर में जो बाह्य आचरण कर रहे हैं बस इतना ही कर सकते हैं, लेकिन हमको भय है, उनसे स्नेह है, वो छूटेगा तो क्या होगा। तो यही कहा, सम्यक दर्शन को भी धारण करना चाहो तो एकाकी बनना पड़ता है, सबसे निष्प्रह हो करके ही सम्यक्तो को धारण करना पड़ता है। धर्म अकेले में धारण करने का चीज है, स्त्री को साथ लेकर के, और वो भी कौन आयतन नहीं है, वो अनायतन को साथ में लेकर के आप सम्यक दर्शन पाना चाह रहे हैं, तो ये कभी संभव नहीं है। जो आयतन के कोटि में व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, उस जीव को साथ में मत लो, ये कहा है। छह अनायतन होते हैं, प्रमुख अर्थ अनायतन को छोड़ो, जो अप्रमुख हैं वो भी तो डेंजर हैं हमारे लिए। प्रमुख आदि के तीन छोड़ो, बाद के तीन, हाँ सेवक तो हैं वो, और उससे स्नेह है, और उस स्नेह हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा कोई ना कोई उसमें लाभ है, तो ख्याति या तो लाभ या तो पूजा, इस तीन के वजह से हम कहीं ना कहीं अटकते। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य में जो भाव सम्यक्त को जगाने के जो चार दोषों की चर्चा है, वो चिंतन करने लायक है। भय, आशा, स्नेह और लोभ। किसी से आशा हो गई तो आशा के कारण अटकते हैं, स्नेह हुआ तो स्नेह के कारण अटकते हैं, भय हुआ तो भय के कारण से सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमात्मा लोभी नहीं होता, आशावान नहीं होता, भयवान नहीं होता, धर्मात्मा निष्प्रह रहता है। सम्यक तो रत्न को संभालने के प्रति ये चार दोष नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना, आशा नहीं होना, स्नेह नहीं होना, लोभ नहीं होना। इन चार के कारण से महाव्रतों को धारण करके भी ये चार में से कोई एक था इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जो हमारे ज्ञान को सम्यक बनाता है वो सम्यक दर्शन से हम वंचित रहे। हमारे चारित्र को तो सम्यक बनाने वाला भाव चारित्र है, द्रव्य चारित्र को सम्यक ठहराने वाला कौन है, भाव चारित्र। और भाव चारित्र को सम्यक ठहराने वाले दो हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों को धारण किए बिना भाव चारित्र को जगा नहीं सकते, और भाव चारित्र को जगाए बिना ये द्रव्याचरण, द्रव्य चारित्र, द्रव्य अनुव्रत आदि का पालन, ये सम्यक की कोटि में नहीं आ सकती। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, भाव चारित्र अलग है, और द्रव्य चारित्र अलग है। ऐसा नहीं समझो कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जीवन में आ गया और उसके साथ जो चारित्र आ गया वह भाव चारित्र के साथ रहता है, ऐसा नहीं, वो तो द्रव्य चारित्र आया केवल। और भाव चारित्र किससे जगता है, भाव चारित्र के विनाशक कषायों को जीतने से भाव चारित्र जगेगा। अभी आपने क्या जगाया है, सम्यक तो विनाशक और सम्यक ज्ञान के विनाशक कषायों को हटाया है, तो अनंत अनुबंधी थी और दर्शन मोहिनी था, इन सात प्रकृतियों को हटाने से ज्ञान भी सम्यक हुआ है और दर्शन भी सम्यक हुआ है, सम्यक तो भी सम्यक हुआ है, दर्शन सम्यक हुआ है। दर्शन यानी श्रद्धा गुण, दर्शन यानी मान्यता, उनको हटाने से ये दर्शन गुण सम्यक हुआ। जब सम्यक हुआ तब सम्यक तो गुण पैदा हुआ, अन्यथा पहले भी सम्यक था, वो मिथ्या नहीं था, पर यात्रा में था, मंजिल पर नहीं था। सच्चे तत्वों का ही विचार करता था ना, चार तो तत्व के ही थे, ये सम्यक ही था और दर्शन था, ये मान्यता थी, सम्यक में मान्यता का प्रवेश हुआ था, मान्यता बना रहे थे वो। मान्यता एकाएक ही नहीं बनती, जैसे छक लग जाता है, एक साथ स्विच दबाते ही लाइट लग जाता है, ऐसा नहीं। हमको तत्व मिल गया और एकदम से सम्यक दर्शन हुआ, कभी नहीं होता ऐसा। तत्वों का विचार होता है, फिर श्रद्धा जगती है, जगते जगते उसमें प्रौढ़ता आती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, पांच लब्धियां बनती हैं, करण लब्धि में प्रवेश होता है, मान्यता में गाढ़ता आती है। उसी दर्शन में, सम्यक दर्शन में ही, सम्यक दर्शन, दर्शन यानी श्रद्धा, श्रद्धा गुण में प्रौढ़ता आती जाती है और इसके बाद सम्यक तो गुण प्रकट होता है जब कार्य सिद्धि होती है। इसी सम्यक मान्यता के बल पर हम सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षोपशम आदि कार्य करते हैं। सम्यक तो गुण प्रकट हुआ, कब हुआ? जब उपशमित हो गए। तो सम्यक तो शक्ति अलग है, सम्यक तो गुण है और श्रद्धान भी एक गुण है। श्रद्धान गुण को सम्यक दर्शन कहा है। यहां दर्शन शब्द श्रद्धा का वाचक, वो सम्यक्तु का वाचक नहीं, सम्यक्तु का वाचक कह भी नहीं सकते, क्योंकि अभी मान्यता में, जैन दर्शन के मान्यता में अभी आया है। अब इस दर्शन में मान्यता बढ़ा रहा है, दर्शन यानी मान्यता, श्रद्धा, और इसको भी गुण कहा है। ये श्रद्धा गुण है, इस श्रद्धा गुण में प्रौढ़ता आती जाती है, पांच लब्धियों के माध्यम से और अंतिम लब्धि में भी, और यही विशुद्धि के साथ आगे बढ़ती रहती है, और वह विशुद्धि सप्त प्रकृतियों के उपशमन में कारण बनती है। श्रद्धा गुण का विकास साथ साथ विशुद्धि का विकास, दोनों एक साथ होते हैं। श्रद्धा जमी, अतत्वों से श्रद्धा हटी, तत्वों पर श्रद्धा जमी, अब इसमें श्रद्धा को भी मजबूत बना रहा है और विशुद्धि को भी बढ़ाता बढ़ाता विकसित करता हुआ जा रहा है। तो इसमें दोनों कारण हैं, श्रद्धा गुण का विकास भी दर्शन मोहिनी के सप्त प्रकृतियों के उपशमन आदि में कारण है और विशुद्धि भी कारण है। ये दोनों अपनी चरम सीमा पर जिस समय आते हैं वहां पर कार्य सिद्धि होती है। वहां तक जीव को मिथ्यात्व का उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है, फिर भी सम्यक श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, श्रद्धा है, पर सम्यक तो गुण की उपलब्धि अभी नहीं हुई। सम्यक तो गुण को वह उस समय हासिल करेगा जब उसकी श्रद्धा प्राउड बनेगी। ऐसा नहीं समझना कि सम्यक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धा कर लिया, जिस समय श्रद्धान हो गए उसी समय सम्यक दर्शन हो गया, इतनी जल्दी नहीं बनता। प्रत्येक लब्धि का काल अंतर अंतर मुहूर्त है, एक समय वाला काम नहीं है, ये समय बहुत छोटा होता है। जिस समय में सम्यक श्रद्धा हो गई उसी समय सम्यक दर्शन हो गया, इसलिए श्रद्धा का नाम ही सम्यक तो ऐसा भी नहीं कह सकते। श्रद्धा गुण अलग, सम्यक तो गुण अलग, श्रद्धा गुण सम्यक्तो का साधन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है ना, यानी सम्यक मान्यता बनती है ना, तो मान्यता बनने के बाद सम्यक्त गुण प्रकट होगा ना, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसमें भी सम्यक दर्शन दर्शन शब्द को ही रखा है, लेकिन वो गुण रूप है। जब मार्ग कहेंगे उसको तब उस सम्यक दर्शन को ही गुण कहेंगे। दूसरी बात, उपशम सम्यक्तो की प्राप्ति के उपरांत भी उस सम्यक दर्शन को दर्शन शब्द से ही कहा जा रहा है। उपशम सम्यक दर्शन ऐसा क्या नाम नहीं है, तो उसका क्या तात्पर्य? उपशमित हुए हैं सात प्रकृतियां जिस मान्यता से, उपशमित हुए हैं, उपशमित होने से हुआ है जो सम्यक दर्शन, उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। जिस मान्यता से सात प्रकृतियां उपशमित हुए हैं उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। और भी ऊपर सम्यक दर्शन है, क्षोपशम, क्षायिक, और भी आगे बढ़ना है। ये दर्शन, ये मान्यता जो आरंभिक मान्यता है, वो तत्वार्थ श्रद्धा वाली जो मान्यता है, उस तत्वार्थ श्रद्धा वाली मान्यता के माध्यम से ही हमने प्रथमोपशम सम्यक तो पाया है। इसलिए उस प्रथमोपशम सम्यक तो गुण को भी, सम्यक तो गुण तो है ही वो, उस सम्यक तो गुण को भी दर्शन शब्द लगा दिया, वहां भी मान्यता आ गई। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ऐसा भी कह सकते हैं, प्रथमोपशम सम्यक तो कह सकते थे, दर्शन हटाओ अब, क्योंकि दर्शन तब तक आवश्यक था जब तक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब दर्शन शब्द को लाने की क्या जरूरत है, प्रथमोपशम सम्यक तो कहो, नहीं, सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आगे बढ़ना है और यही अंतिम स्टेज हमारा नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक तो ही एक सम्यक तो गुण, यही गुण अंतिम गुण है, और इससे मोक्ष सिद्धि होगी क्या? नहीं, हमारे लिए और भी श्रद्धा के विषय हैं आगे। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि भी श्रद्धा को नहीं छोड़ता, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद श्रद्धा की क्या जरूरत है? नहीं, सम्यक तो गुण को पाने के लिए, प्रथमोपशम सम्यक तो को पाने के लिए श्रद्धा गुण तो आवश्यक था ही, जो आवश्यक था उसको तो हमने हासिल कर लिया और सम्यक प्रथमोपशम सम्यक तो को तो पा लिया, परंतु इसके उपरांत भी इस सम्यक तो का नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ऐसा कह रहे हैं। क्या श्रद्धान करना है? अभी तो है ऊपर चढ़ना, क्षायिक सम्यक दर्शन के प्रति श्रद्धा है क्या? नहीं, तो क्षायिक सम्यक दर्शन वो भी तो तत्व का श्रद्धा, तत्व ही तो है, उसमें सात प्रकृतियों का क्षय करना अनिवार्य है, उसके प्रति आस्था रहेगी कि नहीं? आस्था रहेगी। सम्यक तो गुण को पाने के बाद भी आस्था की जरूरत है, प्रवाहित रहेगी वो श्रद्धा, निरंतर प्रवाहित रहेगी। अब प्रवाहित कब तक रहेगी प्रश्न उठता है, हाँ, क्षायिक तक। अब क्षायिक होने के बाद भी प्रवाहित रहेगी कि नहीं? तो कहीं रहेगी। कैसे रहेगी? क्योंकि क्षायिक सम्यक तो हमारे लिए चौथे में ही हो गया है, तो अब श्रद्धा किसके प्रति? हाँ, अब क्षायोपशम चारित्र के प्रति श्रद्धा जगाओ, चारित्र गुण को जगाने के लिए और श्रद्धा चाहिए पड़ेगी। चारित्र तो समर तत्व है, समर तत्व के प्रति श्रद्धा, ये क्या तत्व का श्रद्धा नहीं? हाँ, तो चारित्र को जगाने के प्रति श्रद्धा जगाओ, और क्षौक्षम चारित्र प्राप्त कर लिया तो अब क्षायिक चारित्र को जगाने के प्रति श्रद्धा जगाओ। ये श्रद्धा का प्रवाह कब तक रहेगा? सिद्ध भगवान बनने तक लगातार रहेगा, और सिद्ध भगवान बनने के बाद फिर भी श्रद्धा चाहिए? देखो, हम मार्ग से जब पार हो गए तो फिर अब साधने की कोई भी चीज नहीं है, साधने के लिए ही हम सब कुछ श्रद्धा के रूप में लाते थे, अब कुछ नहीं रहा। हम मंजिल पर आ गए, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र यहाँ पर तीनों एक हैं। अब जगाने की जरूरत है तन्मय, तन्मय। क्वालिटी में फर्क पड़ता जाएगा। हाँ ठीक है, देखो क्वालिटी फर्क कहाँ रहेगा? देखो, उपशम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो यहाँ सम्यक्तु की अपेक्षा से क्वालिटी में फर्क है। प्रथमोपशम सम्यक्तु को जगा है तो क्षौपशम सम्यक्तु को जगाना है, क्योंकि उसके बिना क्षायिक होने वाला नहीं है। तो क्षौपशम सम्यक्तु के प्रति आस्था चाहिए, तो यहाँ पर तो क्वालिटी में फर्क है। प्रथमोपशम सम्यक्तु की श्रद्धा को और क्षौपशम सम्यक्तु की श्रद्धा को एक जैसा नहीं कह सकते। क्षायिक हो गया, क्षायिक की श्रद्धा को एक जैसे नहीं कह सकते, तीनों सम्यक्तु की श्रद्धा अलग अलग है। अब सम्यक्तु को तो पा लिया, क्षायिक सम्यक्तु हो गया, अब क्वालिटी का फर्क कुछ भी नहीं कर सकते आप सम्यक्तु के संबंध में। क्षायिक जब होगा, अब चारित्र की अपेक्षा से श्रद्धा जुड़ेगी, उसमें तरतमता रहेगी। जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्षायोपशम सम्यक तो ऊपर श्रद्धान कर रहा है तो ये अलग, और एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्षायोपशमिक चारित्रवान जीव क्षायिक चारित्र पर श्रद्धान रख करके उस ओर बढ़ रहा है, फर्क है दोनों में। तो श्रद्धा गुण उस क्षायिक सम्यक्त के साथ निरंतर मार्ग में बढ़ता हुआ ही जा रहा है। श्रद्धा कैसे छूटती सिद्ध अवस्था में, अरहंत अवस्था में? हाँ, अरहंत अवस्था में। हाँ ठीक है, हाँ, श्रद्धा गुण का विकास वहां पर भी होता जाता है, क्योंकि चारित्र अपूर्ण है, अभी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो वो श्रद्धा से ही। देखो, दर्शन और ज्ञान 13वें गुणस्थान में पूर्ण माने गए हैं, ये ठीक है, लेकिन चारित्र अपूर्ण है। किस गुणस्थान में? 13वें गुणस्थान में। वो 14वें गुणस्थान में पूर्ण होगा। ज्ञान के सारे अविभागी प्रतिच्छेद खिल गए हैं, कहां पर? 13वें में। और दर्शन के भी सारे अविभागी प्रतिच्छेद खिल गए हैं, अब विकास की जरूरत नहीं, पूर्ण है दोनों। दर्शन भी पूर्ण है, ज्ञान भी पूर्ण है। नीचे हम पूर्ण नहीं कह सकते, भले ही चारित्र सम्यक तो क्षायिक हो, क्षायिक सम्यक तो के अविभागी प्रतिच्छेद नीचे अपूर्ण है और 13वें गुणस्थान में पूर्ण है। चौथे गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक यही अविभागी प्रतिच्छेद खिलते 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 जाते हैं। चौथे में तो इतना ही, क्षायिक सम्यक शुद्धों का क्षायिक सम्यक दर्शन और छद्मस्थ चतुर्थ गुणस्थान का क्षायिक सम्यक एक मानते हैं, बिल्कुल गलत है। एक हो गए तो दोनों ही पूर्ण माने जाएंगे, नहीं, अविभागी प्रतिच्छेद खिलना शेष है, वास्तव में शेष है। तो वो इतना ही है चौथे गुणस्थान में। पंचम में गए, थोड़ा सा खिल गया, खिल गया, खिल गया, खिल गया, कितने स्टेज पर, ये खिलने के कितने स्टेज हैं, चौथे से लेकर 13वें तक खिलने के स्टेज हैं, वहां पूर्ण माना जाएगा। कहा तो है 13वें गुण स्थान में ज्ञान भी पूर्ण हो जाता है और दर्शन भी, लेकिन चारित्र अपूर्ण ही रहता है, तो 14वें गुण स्थान में पूर्ण होगा। 18,000 शील जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक कुशील है आत्मा, 18,000 शील जब तक पूर्ण नहीं होते, प्राप्त नहीं होते, तब तक आत्मा को कुशील कहा है। शील का मतलब क्या, शील की कमी, शीलों में कमी, तो संख्या तो बढ़ रही है लेकिन 18,000 अभी नहीं है। संख्या बढ़ते 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 बहुत कुछ बढ़ गई है, लेकिन फिर भी संख्या कम होने से कुशील, संख्या जब पूर्ण हो जाएगी 100% खिलेगा चारित्र, कहां 14वें में, 14वें में खिलेगा। टाइम गया, ये यहीं रहा।